नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 पेश करेंगी। विधानसभा में आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से खेती के साथ साथ मछली, भेड़ और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया। जैसलमेर में मरु महोत्सव और डूंगरपुर में बेणेश्वर मेले की आज से शुरुआत। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच अधिकांश स्थान कोहरे की चपेट में, 11 जिलों में आज घने कोहरे का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 पेश करेंगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इस सर्वेक्षण को तैयार किया है। आर्थिक सर्वेक्षण देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा है। केंद्रीय बजट 2026-2027 आगामी रविवार को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। विधानसभा में आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सदन के पटल पर वित्त विभाग की 6 और गृह विभाग की 5 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण और सड़क परिवहन निगम सहित 6 वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे प्रस्तुत किए जाएंगे। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राजस्थान के कृषि प्रधान जिलों में खेती के विकास की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इनमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं। श्री चौहान कल बीकानेर में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने किसानों से कृषि के साथ साथ मछली, भेड़ और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी आगे आने को कहा।
छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर हम कैसे फायदे की खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है और फसलों के साथ पशुपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन से लेकर मधुमक्खी पालन तक कौन कौन से रोजगार शुरू किया जा सकते हैं, उनका अभियान भी चलाया जाएगा। क्योंकि किसान तो अन्नदाता है और अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और किसानों की सेवा मेरे लिए कृषि मंत्री के रूप में भगवान की पूजा है, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री बीकानेर के राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र भी गए। उन्होंने वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान का दूसरा चरण कल से शुरू हुआ। आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने नई दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया। 3 महीने के इस अभियान का उद्देश्य देशभर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में महत्वपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। ये अभियान वर्ष 2024 के अभियान की सफलताओं को आगे बढ़ाते हुए 112 आकांक्षी जिलों में 5 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों और 513 आकांक्षी ब्लॉकों में 6 संकेतकों की व्यापकता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इन संकेतकों के दायरे में स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छता, शिक्षा, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, तपेदिक मामलों की पहचान और पशु टीकाकरण जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र आते हैं। प्रदेश में लगाए जा रहे ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को कृषि विभाग सहित 13 विभागों की योजनाओं का लाभ मौके पर ही पहुंचाया जा रहा है। ये शिविर 31 जनवरी तक आयोजित होंगे। इनमें किसानों को तारबंदी, फार्म पॉन्ड, फसल बीमा और सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
ग्राम उत्थान शिविरों में कृषि विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 4,132 कृषकों को विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और 4,231 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक किया गया है। शिविरों में तारबंदी के 73, पाइपलाइन के 41 और फवारा संयंत्र के 33 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त फॉर्म पॉन्ड के 22 और ड्रिप सिंचाई के 5 आवेदनों पर भी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इन प्रयासों से जिले के किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती, आधारभूत स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। श्री शर्मा ने ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मेट्रो विस्तार, शहरी यातायात और ऊर्जा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विकसित किए जा रहे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जैसलमेर का विश्वविख्यात मरू महोत्सव आज से शुरू हो गया है। ये महोत्सव 1 फरवरी तक जैसलमेर, पोकरण, सम और खुहड़ी में आयोजित किया जाएगा। पोकरण में नेपालेश्वर महादेव मंदिर में आरती के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि महोत्सव के दौरान कई रोचक प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक आयोजन होंगे।
भव्य एवं रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान आज मिस व मिस्टर पोकरण जैसी रोचक एवं आकर्षक प्रतियोगिताएं भी होगी। वहीं रसाकसी, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं, दौड़ एवं म्यूजिक चेयर प्रतियोगिताएं दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। आज सायं लोहारकी के मखमली धोरों पर स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। इस दौरान प्रसिद्ध लोक कलाकार मोती खां की भव्य सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित होगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
डूंगरपुर में माही, सोम और जाखम नदियों के संगम स्थल पर बेणेश्वर मेला आज से शुरू हो रहा है। आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मेले में देश प्रदेश के सुदूर इलाकों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्य मेला 1 फरवरी को भरेगा। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे डूंगरपुर संवाददाता।
बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज राधा कृष्ण मंदिर पर सप्तरंगी तौरण ध्वजा फहराकर मेले की विधिवत शुरुआत करेंगे। 10 दिनों तक चलने वाले मेले में राजस्थान के साथ ही सीमावर्ती गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत देश भर के कई जगहों से श्रद्धालु पहुंचेंगे। वहीं स्थानीय श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए बेणेश्वर धाम पर धर्म ध्वजाएं लेकर काजी बाजी के साथ पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालु देव दर्शनों का लाभ लेंगे। यहां बेणेश्वर शिवालय, राधा कृष्ण मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर और वाल्मीकि मंदिरों में दर्शन करेंगे। 1 फरवरी को माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन मुख्य मेला भरेगा। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
प्रदेश में आज कड़ाके की ठंड के बीच कई स्थान घने कोहरे की चपेट में हैं। इससे यातायात और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सवाई माधोपुर और भरतपुर सहित अन्य स्थानों पर सड़क यातायात पर असर पड़ा है। सड़क के साथ रेल मार्ग भी प्रभावित हुआ है। भीलवाड़ा में धुंध के साथ सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। चूरू में कोहरे से दृश्यता काफी कम बनी हुई है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोहरे के कारण वाहनों की गति धीमी रही।
करौली में बीते दिनों पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश के बाद सर्दी का असर और अधिक बढ़ गया है। ठंडी हवाओं और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह के समय जबरदस्त कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरों में कंबल, अलाव सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। बांकी वैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें शेखावाटी क्षेत्र और उत्तर पूर्व के जिले शामिल हैं। विभाग ने 31 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके असर से राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 पेश करेंगी। विधानसभा में आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से खेती के साथ साथ मछली, भेड़ और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया। जैसलमेर में मरु महोत्सव और डूंगरपुर में बेणेश्वर मेले की आज से शुरुआत और प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच अधिकांश स्थान कोहरे की चपेट में 11 जिलों में आज घने कोहरे का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।